आचार्य भगवंतों ने हर व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप बताई है और सबके लिए एक बहुत कॉमन सी प्रक्रिया भी दी है कि हम जब तक विद्या का अध्ययन करें, अर्जन करें, तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अपने उस विद्या अध्ययन के काल को व्यतीत करें। फिर यदि विद्या अध्ययन के बाद हमारा मन होता है कि हमें अब संसार से विरक्त होना है, तो हम संसार से विरक्त भी हो सकते हैं, अन्यथा हम अपने क्रमिक विकास की प्रक्रिया में शामिल होते हुए गृहस्थ जीवन को अंगीकार करें और अपने गृहस्थी के दायित्व को पूरा करें। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना और गृहस्थी के दायित्व को शांति पूर्वक और संतोष पूर्वक निर्वाह करना, गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो अपनी गृहस्थी को शांति और संतोष पूर्वक व्यतीत करे, अपने दायित्व को पूरा करे, और दायित्व को पूरा करके फिर घर में रहते हुए भी और दृष्टि उसकी निष्प्रय होकर के जंगल की तरफ हो जावे, इसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। विद्या अध्ययन के समय ब्रह्मचर्य का धारण करें, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने कर्तव्यों का पालन करें और कर्तव्य पूर्ण हो जाने पर, यानी सीधी बात है कि अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब बच्चों के पालने पोसने की जिम्मेदारी नहीं है अपने ऊपर, बात इतनी है सिर्फ। लेकिन यहां जाके हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, अपना कर्तव्य पूरा किया, बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, अब बच्चों के बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी क्यों? अब निष्प्रय होकर के घर में तो रहेंगे, लेकिन अब अपने आत्म कल्याण और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखते हुए रहेंगे, जैसे कोई पेइंग गेस्ट पैसे देकर के और भोजन करता है किसी घर में, लेकिन उस घर के किसी भी मामले में दखल नहीं करता है। ठीक इसी तरह घर में रहते हुए भी अपने जीवन को इतना निष्प्रय बना लेना कि बहुत साम्य भाव, बहुत संतोष पूर्वक अब शेष जीवन व्यतीत हो, क्योंकि संसार तो एक वृक्ष की तरह है जिसमें खट्टे मीठे सब तरह के फल लगते हैं, और रस कहां से आता है? जड़ों से आता है, और जड़ें अंधेरे में रहती हैं। ठीक इसी तरह ये जीवन है, ये संसार है, इसमें खट्टे मीठे फल पुण्य और पाप दोनों के मिलते हैं, और ये कब तक मिलते रहते हैं? फल तोड़ लेने के बाद भी वृक्ष हरा भरा रहा आता है, क्यों? क्योंकि मोह की जड़ों से पानी आ रहा है, अपनी अज्ञानता, अपने मोह जो कि अंधकार में है जड़ें जैसे, ऐसे ही हम भी अपने जीवन को जब तक मोह और आसक्ति में घेरे रहते हैं, तब तक इस वृक्ष को, संसार के वृक्ष को रस मिलता रहता है और पुण्य पाप के फल ये हरा भरा बना रहता, लगते रहते हैं। मैं क्या करूं इस संसार के बीच? तो मैं सबसे अच्छा है कि इस संसार के बीच और समता भाव और संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूं। यहां इस संसार में खोना और पाना दोनों ही दुखदाई हैं। कोई ऐसा हो कि पाने वाला सुखी हो और सिर्फ खोने वाला ही दुखी हो? नहीं भैया, पाने खोने वाला दोनों ही दुखी हैं। एक बहुत छोटी सी घटना कल मैं पढ़ रहा था, दो बच्चे स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाने में दोनों को रास्ते में देर हो गई। जब स्कूल पहुंचे, गुरुजी ने कहा कि इतनी देर से क्यों आए, तो पहले वाले ने कहा कि क्या करें गुरुजी, एक रुपया माँ ने दिया था, वो रास्ते में कहीं गिर गया, मैं उसको खोज रहा था और खोजने में देर हो गई और आखिर वो मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, और इस तरह मुझे देर हो गई। दूसरे से कहा कि तेरे को देर क्यों हुई? बोले इनकी वजह से हो गई। अरे इनकी वजह से क्या? क्या इनने रोक रखा था? बोले नहीं, ये वहां से हट ही नहीं रहे थे। मतलब ये कि वो जो रुपया था ना, उस पर तो मैं पैर रख के खड़ा था, जब ये वहां से हटे तब मैं आगे बढ़ू। दोनों लेट पहुंचे, एक जिसने खोया था वो भी दंडित हुआ, दूसरा जिसने पाया था वो भी लेट हुआ, वो भी दंडित हुआ। एक को खोने की पीड़ा है, एक को पाकर के फिर खो ना जाए इस बात का भय है, दोनों को ही तक। संसार इससे ज्यादा और नहीं है। यहां हम खो देते हैं तो दुख पाते हैं, मिल जाता है तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम, उसका भय, वो भी हमें पीड़ा देता है। भैया, इस संसार से, इस संसार के चक्र से कैसे हम मुक्त हों, या कि इस संसार के बीच हम कैसे बेहतर ढंग से जिएं? तो सबसे बेहतर ढंग यही है कि हम जहां भी रहें, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे साधु के जीवन में हो, अत्यंत निष्प्रहता पूर्वक रहें। सुख और दुख दोनों के बीच साम्य भाव जितना बन सके, सब एकदम तो 100% तो संभव नहीं, पर जितना बन सके उतना हम साम्य भाव रख सकें, शायद यही प्रक्रिया एक साबक के लिए और एक साधु के लिए आचार्य भगवंतों ने अलग अलग ढंग से कही है। आज